नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना दोनों इंजनों में ईंधन आपूर्ति बंद हो जाने के कारण हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मेक्सिको पर 30% शुल्क लगाया। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। युवाओं को रोजगार के माध्यम से सामाजिक विकास का लक्ष्य हासिल करने की सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप आज देश के विभिन्न भागों में 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्तियों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के रोजगार मेला कार्यक्रम के जरिए लाखों युवा केंद्र सरकार में पहले ही स्थायी रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि युवा राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। केंद्र ने इस कार्यक्रम के लिए बजट में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिससे रोजगार के 3.5 करोड़ अवसर पैदा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में मध्य रेलवे ने मुंबई, पुणे और नागपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सभागार में 189 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल की ओर से 148 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पश्चिम बंगाल में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सियालदह, सिलीगुड़ी और खड़गपुर में विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। राज्य में कुल 449 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नागालैंड के डिमापुर में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए युवाओं को रोजगार के लिए प्रधानमंत्री की पहल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन्नयन की सराहना की। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कल रात जारी कर दी। रिपोर्ट में घटनाक्रम और एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान AI-171 की इंजन की स्थिति की जांच की गई। इससे पता चला है कि विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड में ही विमान के दोनों इंजन के ईंधन स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर ही रन मोड से कट ऑफ मोड में बदल गए, जिसके कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। इस बीच नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने AAIB की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे।
This is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. We are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them, but AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions.
Air India ne kaha hai ki wo sabhi viniyamakon aur pakshkaron ke sath milkar kaam kar raha hai aur Ahmedabad viman घटना की चल रही जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर में महिला सैनिकों और पायलटों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर परिसर में नए ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में महिलाओं की भागीदारी से भारतीय सेना पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट करने में सफल रही।
भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन में केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष करगिल युद्ध की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य दक्षिणी राज्यों के विकास से ही साकार होगा। श्री शाह ने आज तिरुवनंतपुरम के पुथारिकंदम मैदान में भाजपा की वार्ड स्तरीय नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि विकसित केरलम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सिद्धांतों पर आधारित है।
जिस आधार पर विकसित केरलम की कल्पना हम करते हैं उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत हैं। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होगा। और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना।
इससे पहले श्री शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के नए राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मान से प्रत्येक भारतीय गर्वित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मराठा साम्राज्य सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास को जानने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी है। मुंबई के दादर में छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये किले वैश्विक सम्मान और गौरव के प्रतीक हैं। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है और देशवासियों को बधाई दी है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता से ये रिपोर्ट।
पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में देश के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित हो गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य इस सूची में मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। समिति की बैठक के दौरान 20 में से 18 देशों ने इस महत्वपूर्ण स्थल को सूची में अंकित कराने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैले 12 किलों का ये असाधारण नेटवर्क मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर, वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है। श्री जाधव ने ये बात गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस संस्थान का हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है।
आयुर्वेदा और योगा इसलिए कि कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम योगा करते हैं, और बीमारी होने के बाद में उसको दुरुस्त करने के लिए भी योगा हो या आयुर्वेद को उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी हमारा आयुर्वेद पूरे दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि उसने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधे संपर्क किया है। आयोग का कहना है कि राज्य के 80.11% मतदाता अपने गणना प्रपत्र पहले ही जमा करवा चुके हैं। आयोग का कहना है कि 25 जुलाई के निर्धारित समय के पहले ये गणना प्रपत्रों के संग्रह को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में अपने नाम शामिल करने के लिए उचित दस्तावेजों के साथ मतदाताओं को अपने गणना प्रपत्र जमा कराने होंगे। कोलकाता स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जोका में हुए दुष्कर्म के आरोपी को आज अदालत ने 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। परिसर में कल एक छात्र ने कथित तौर पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कर्नाटक निवासी परमानंद टोपवाकर नामक छात्र को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना में प्रतिबंधित CPI माओवादी के 6 कार्यकर्ताओं ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक रोहित राजू ने बताया कि माओवादी राज्य सरकार द्वारा उनके लिए शुरू किए जा रहे कल्याणकारी उपायों की ओर आकर्षित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 300 माओवादियों ने जिला पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई ने आज शाम हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय में भारत का संविधान डॉ B.R. अम्बेडकर का योगदान विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉ अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज मैक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात पर 30% शुल्क लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। इसकी घोषणा ट्रुथ सोशल पर जारी पत्रों में की गई है। यूरोपीय संघ को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का व्यापार घाटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ कई सप्ताह तक चली वार्ता के असफल होने के बाद ये घोषणा की गई है। गाजा पट्टी में इसराइल के हवाई हमलों में लगभग 28 लोग मारे गए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार कल मध्य गाजा के देर अल बलाह में मारे गए 13 लोगों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच इसराइल की सेना ने खबर दी है कि पिछले 48 घंटों में गाजा के लगभग 250 ठिकानों पर सेना ने हमले किए हैं। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ R.K. जेनवानी ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी।
12 जुलाई में एक घूर्णी वलय बना हुआ है जो पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश के पास, इसके कारण मध्य प्रदेश में ऑरेंज कलर और पूर्व राजस्थान में भारी बारिश, अति भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगर बाकी भारत का बात करें तो मानसून का जो ट्रफ है वो सूरतगढ़ से लेकर के दीघा तक लंबित है और नॉर्मल पोजिशन में है और हेवी रेन रहेगा बाकी इलाके में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बात करें, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगा हुआ जो दिल्ली के उत्तर में है।
और अब कुछ खेल खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 330 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 145 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत अभी इंग्लैंड से 57 रन पीछे है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड की इगा श्वांतेक का मुकाबला अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से हो रहा है। इस बीच पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की जोड़ी ने खिताबी मुकाबला जीत लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना दोनों इंजनों में ईंधन आपूर्ति बंद हो जाने के कारण हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मैक्सिको पर 30% शुल्क लगाया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।